खंड सात, नाट्य समीक्षा। हिंदी की समसामयिक आलोचना की एक बड़ी उपलब्धि दृश्य काव्य के रूप में नाटक की समीक्षा का विकास है। यूं तो हिंदी में नाट्य समीक्षा के आरंभ का श्रेय कृतिकारों में भारतेंदु को और आलोचकों में बाबू श्याम सुंदर दास को दिया जा सकता है, परंतु भारतेंदु ने अपने निबंध नाटक में से और श्याम सुंदर दास ने अपने ग्रंथ रूपक रहस्य में मुख्यतः संस्कृत के नाट्य शास्त्र की उद्धरणी ही की है। इनके उपरांत नाट्यालोचन की जो परंपरा चल निकली उसमें या तो नाटकों के कुछ शास्त्रीय अध्ययन मुख्य सम्मुख आए अथवा उपन्यास और कहानी आदि के समानांतर एक साहित्यिक विधा के रूप में कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल, वातावरण आदि नाटक के तथा कथित तत्वों पर विचार किया जाने लगा। इस प्रकार के अध्ययनों के बीच कहीं कहीं चलताऊ ढंग से नाटक विशेष की अभिनेयता पर भी विचार कर लिया जाता था, परंतु स्पष्ट ही इस प्रकार की समीक्षाओं में नाटकों की रंगमंचीय समस्याओं के व्यावहारिक और सटीक बोध का प्रमाण नहीं मिलता। इस बंधी परिपाटी के से भिन्न नाटक के संदर्भ में कुछ मौलिक और सैद्धांतिक सवाल उठाने का श्रेय स्वयं प्रसाद को दिया जा सकता है, जबकि विडंबना यह है कि स्वयं उन्हीं के नाटक उस समय की अधिकांश प्रशंसात्मक और विध्वंसात्मक आलोचना के केंद्र में थे। रंगमंच की दृष्टि से यदि उस समय नाट्य समीक्षा के प्रयास किए भी गए तो हिंदी के किसी निजी रंगमंच के अभाव में वे अनौचित्यपूर्ण ही सिद्ध हुए। प्रसाद जी के नाटक नाम से श्री कृष्ण नंद गुप्त ने इसी ढंग का प्रयास किया जिसमें उन्होंने इप्सोनियन रंगमंच अभिव्यक्ति शैली और इप्सोनियन बुद्धिवाद की कसौटी पर प्रसाद जी के स्कंदगुप्त की संक्षिप्त और चंद्रगुप्त की विस्तृत विध्वंसात्मक समीक्षाएं प्रस्तुत की। इस कसौटी के आयात की आवश्यकता हिंदी में अपने साहित्यिक या स्तरीय रंगमंच की कंगाली का प्रमाण है। इस प्रयास से किसी रंगमंचीय नाट्य समीक्षा की प्रणाली का विकास भले ही न हुआ हो, हिंदी की नाट्य समीक्षा पर इब्सनवाद के प्रभाव का बोध अवश्य होता है, जिसकी पुष्टि बाद में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने समस्या नाटकों की लंबी भूमिकाओं में की। रंगमंच से संबद्ध समस्याओं की चर्चा उपेंद्रनाथ अस्क ने भी की अपने नाटक संग्रहों की भूमिकाओं में समय समय पर की, परंतु विकसित व्यावसायिक रंगमंच के अभाव में लंबे समय तक नाटक इन समीक्षाओं के में साहित्यिक विधा ही बना रहा और उनका अध्ययन मुख्यतः श्रव्य काव्य के रूप में या अधिक से अधिक कल्पित दृश्य काव्य के रूप में किया गया। स्वाधीनता के बाद छठे दशक के अंत में संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड एशियन थिएटर की स्थापना इस दृष्टि से एक ऐतिहासिक घटना है। विशेष रूप से निदेशक पद पर इब्राहिम अलकाजी की नियुक्ति हिंदी रंगमंच में एक नए युग के आरंभ की सूचक है। अलकाजी के आगमन के साथ इस संस्था में पहली बार रंगमंच की आधुनिक तकनीकी का विधिवत अध्यापन और मंच पर व्यावहारिक प्रयोग आरंभ हुआ। यूँ हर शहर और कस्बे के अपने शौकिया और लोक मंच पहले भी थे। बंगला और मराठी रंगमंच का इतिहास पर्याप्त समृद्ध रहा है, परंतु नेशनल स्कूल के रंगमंचीय प्रयोगों के साथ न केवल अभिनय कला को एक गौरवपूर्ण स्तर मिला, बल्कि रंगमंच संबंधी धारणाओं में मूलभूत परिवर्तन परिलक्षित हुआ। रंगमंच की दृष्टि से नाटकीय अपेक्षाएं कुछ और होने लगी। खुले रंगमंच पर भारती के अंधा युग की प्रस्तुति इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना थी। यूं कृति में 1959-60 ईस्वी में पार्श्व और प्रेक्ष्य नामक स्तंभ के अंतर्गत नेमी चंद्र जैन पहले भी नाट्य समीक्षा के छिटपुट उदाहरण प्रस्तुत कर चुके थे, परंतु यह आकस्मिक नहीं है कि उन्होंने नट रंग जैसी नाटक केंद्रित पत्रिका के प्रकाशन की योजना, नेशनल स्कूल की स्थापना और रंगमंचीय प्रयोगों के उपरांत ही कार्यान्वित की। इसी समय के आसपास 1963-64 कल्पना में धारावाहिक रूप से वीरेंद्र नारायण के प्रसाद ने प्रसाद के स्कंद गुप्त के रंग प्रकरण पर समीक्षा लेखों में विचार किया। विविध नाटकों की फुटकर समीक्षाएं लिखने के अतिरिक्त नेमी चंद्र जैन ने नाट्य कला पर रंग दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने नाटक और रंगमंच शीर्षक पुस्तक में भारतीय और पाश्चात्य नाटक एवं रंगमंच की परंपराओं से विधिवत परिचय कराने का प्रयत्न किया। कहने का तात्पर्य यह है कि नाट्य समीक्षा के केंद्र में नाटक केवल साहित्यिक विधा न रहकर रंगमंच के संदर्भ में नाटक हो गया। रंगमंच की दृष्टि से जिन बहुत सी बातों पर विचार करना जरूरी समझा गया, उनमें से एक पक्ष नाटकों की भाषा का था। डॉक्टर गोविंद चातक ने जब प्रसाद के नाटकों का भाषिक विश्लेषण प्रस्तुत किया तो उसकी मूल दृष्टि रंगमंचीय थी, परंतु आधुनिक संदर्भ में रंगमंच पक्ष से नाटक में भाषा के प्रयोग का सवाल उठाने का श्रेय मुख्य रूप से डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल को है। उनके द्वारा उठाए जाने पर यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वे स्वयं एक प्रयोगशील नाटककार हैं। अब तक नाट्य समीक्षा के जिस विकास की चर्चा की गई, उसके समानांतर एक पूरा दौर उन समीक्षात्मक लेखों का है जो दिन प्रतिदिन रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले नाटकों को लक्ष्य कर लघु पत्रिकाओं एवं नियमित रूप से निकलने वाली अन्य पत्र पत्रिकाओं में सामने आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन लेखों में विचारणीय विषय नाटक नहीं, नाटक की रंगमंचीय प्रस्तुति रहती है। यह पूरा सिलसिला जैसे इस बात का प्रमाण है कि हिंदी समीक्षा में पहली बार नाटक की दृश्य काव्य के रूप में सार्थकता नियत हुई है और रंगमंच से उसका सही रिश्ता कायम हुआ है। यूं आज भी न रूपक रहस्य की परंपरा निःशेष हुई है न शास्त्रीय अध्ययनों की, परंतु रंगमंच के व्यवहारिक ज्ञान से एकदम अनिभिज्ञ बुद्धि से रचित इस प्रकार की विशाल पोथियों, शोध ग्रंथों और नाट्य कोशों को कहाँ तक सही अर्थ में नाट्य समीक्षा कहा जा सकता है, यह एक अलग प्रश्न है। खंड 7, नाट्य समीक्षा समाप्त।